नमस्कार आदाब श्रोताओं, मोबाइल वाणी के बेहद लोकप्रिय और खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं वैसे मुद्दों के बारे में जिससे आपकी जिंदगी का सीधा सरोकार है, वैसी खबरें जो जिंदगी की आपाधापी में हमसे छूट जाती हैं या खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाती। तो आइए सुनते हैं खबरें जरा हटके।
मैं दीपक आपको जानकारी देने जा रहा हूँ संचार उद्योग के बारे में। भारत जैसे उच्च विविध देश में एक ब्रांड की पहचान स्थापित करना आसान नहीं है, खासकर जब कोई संगठन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हो। 2010 तक कई अखबारों के मुख्य समाचार ने कहा था कि दुनिया का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बनाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में चीन दुनिया की अगली सुपर पावर बनने की राह पर है। इस पूरे व्यापार बदलाव में संचार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 100 साल पहले देश के दूर के इलाकों में बहुत कम पत्रिकाएं थी, मुंह से मुंह प्रचार करना उस समय संचार का एकमात्र प्रभावी तरीका था। संचार के कई रूपों में आज के युग में एक बड़ी संभावना है प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया, जिसके माध्यम से संचार की एक निरंतर खुराक वापस उछाल कर सकती है और उपभोक्ता के दिमाग में ब्रांड के बारे में नकारात्मक छवि बनाने के परिणाम स्वरूप हो सकता है। डिजिटल सामाजिक मीडिया और सामग्री चलित अभियान PR कंपनियों के राजस्व में जितना 25% योगदान देंगे, इसी तरह एक राष्ट्रीय वित्तीय पत्रिका की रिपोर्ट का हवाला देते हुए WPP की स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी ग्रुप M की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में भारत में विज्ञापन व्यय 2017 में 10% बढ़कर 61,204 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। कुछ साल पहले कोई डॉक्टर या वैज्ञानिक भी आउटसोर्सिंग उद्योग में करियर की कल्पना नहीं कर सकता था। ऐसा लगता है कि अब ऐसा हो रहा है। BPO उद्योग ने 360 डिग्री मोड़ लिया है। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में संचार एक महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रम बदल रहा है। यह सिर्फ साधारण समाचार नहीं है, यह वास्तव में चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और विभिन्न शैक्षणिक विषयों के लोगों की सबसे अधिक आउटसोर्सिंग उद्योग में शामिल होने वाला निमंत्रण है। इसलिए आज देश में समग्र अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने में संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सुबह उठने से पहले आपका सेलफोन शेयर बाजार, व्यापार और सभी व्यवसायों के आंकड़ों के साथ झुकता है, जो आपको भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पूर्ण अवलोकन देता है। डिजिटल संचार ने पूरे देश का चेहरा बदल दिया है।
मैं सरस्वती आपको जानकारी देने जा रही हूँ। पश्चिम बंगाल में ममता ने मजदूर कल्याणकारी योजनाओं को बाहर कर दिया है। 24 नवंबर को पश्चिम बंगाल के वित्त विभाग ने असंगठित क्षेत्र के सभी अनुबंध श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद लाभ के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा करने की अधिसूचना जारी की। पूर्व बाम मोर्चा में श्रम मंत्री और CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के राज्य अध्यक्ष आनंदी साहू ने तुरंत उनके सरकार के 1.5 लाख पैकेज का उल्लेख किया है और सुपर नेट्यूटेड श्रमिकों के लिए शानदार फायदे दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि ममता बनर्जी सरकार ने पुरानी योजनाओं को केवल अपनी ही मरम्मत के रूप में पुनर्प्रेषित किया है। 2018 के आरंभ में पंचायत चुनावों के साथ तृणमूल कांग्रेस की सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दौड़ रही है कि राज्य के 100 मिलियन निवासियों के महत्वपूर्ण बहुमत से इस योजना से लाभ होगा। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 4000 संविदात्मक श्रमिक शामिल हैं और असंगठित क्षेत्र में लगभग 15 मिलियन शामिल हैं। सरकार सभी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं जैसे निर्माण, परिवहन, बीड़ी उद्योग और अन्य श्रमिकों के लिए एक छत के नीचे लाने का प्रयास कर रही है। वामपंथी नेताओं का कहना है कि वे डरते हैं कि योजनाओं के बाद निधियों का भ्रम हो जाएगा, क्योंकि सरकार के कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान और सेस लिंक्ड योजनाओं से 1800 करोड़ रुपए की आरक्षित राशि पर सरकार का नियंत्रण होगा। केंद्र से जुड़े उप सेक्स्ट योजनाओं को विलय नहीं किया जा सकता है, उन्होंने श्रम आयुक्त को याचिका दायर की है। सरकार के कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान और सेस लिंक्ड योजनाओं से 1800 करोड़ रुपए के आरक्षित धन पर सरकार का नियंत्रण होगा। हर साल सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए राष्ट्रीय स्वयं विकास योजना के तहत श्रमिकों को चिकित्सा लाभ में 30,000 रुपए का लाभ मिल सकता है, पर इससे भी अधिक विवादास्पद रूप से तृणमूल सरकार ने सेवानिवृत्ति लाभ के लिए श्रमिकों की पात्रता को सत्यापित करने के लिए ट्रेड यूनियन के नेताओं के अधिकार वापस ले लिए हैं। वर्तमान लोकतंत्र के तहत केवल चुने हुए लोगों के प्रतिनिधि ही ऐसा कर सकते हैं। वामपंथी नेताओं का आरोप है कि यह ट्रेड यूनियनों को कमजोर करने और TMC कैडर को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है।
दोस्तों, मैं हूं किशन और मैं आज आपको बताऊंगा देहरादून शहर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव की कहानी। दोस्तों, देहरादून शहर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में 62 साल की विधवा माँ अपने 30 साल के दिव्यांग बेटे के साथ बैठी अपने पास बचे पेंशन में मिले 1000 रुपए दिखाती है। उसके पास पूरे महीने का खर्च चलाने के लिए यही रकम बाकी है। बेटे की पेंशन आती थी, लेकिन पिछले साल वो बंद हो गई क्योंकि बेटे के पास आधार कार्ड नहीं था। आधार बनेगा भी कैसे जब आधार कार्ड बनाने वाले मशीन में बेटे की उंगलियां के निशान और आइरिस को पहचान ही नहीं पाती। आधार की जानकारी न जमा पाने के चलते पेंशन से बंद कर दिए जाने से केवल 62 साल की नीरो देवी परेशान नहीं, बल्कि राज्य के 53,000 से भी अधिक दिव्यांग बुजुर्ग और विधवा को अक्टूबर 2016 से उनका हक नहीं मिल पा रहा है। दिव्यांग पेंशन पाने वाले राज्य के 59,081 दिव्यांगों में से 5,424 4.2 लाख वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों में से 36,060 और 1.5 विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं में 12,047 को आधार की जानकारी जमा न कर पाने की वजह से पेंशन देना रोक दिया गया। नीरो देवी बताती है कि उनके बेटे का आधार कार्ड बनाना बहुत ही मुश्किल है। कभी वो फोटो खींचते देख डर जाता है और हिंसक हो जाता है। उसे आधार कार्ड तक बार बार ले जाना भी उनके लिए मुश्किल है। वो कहती है कि वो अपने बेटे को उस हालत में नहीं देख सकती। उनका घर अब उनकी 1000 रुपए पेंशन से चलता है। अभी तक बेटे की पेंशन से काम चलता था, लेकिन उसके बंद हो जाने से घर चलाना मुश्किल हो गया है।
तो दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ खास खबरें। अगर आपके आसपास या आपके क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो जरा हटके हैं, तो हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल में नंबर 3 दबाकर और साथ ही इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए अभी दबाएं नंबर 5। तो सुनना न भूलें हर बुधवार और शनिवार शाम 4 बजे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरें जरा हटके।